देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। आज का आर्य समाज के नियम की सीरीज में आज थर्ड नियम है। मेरे साथ बोलिए, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यहां आर्य मतलब दोज हु आर प्रोग्रेसिव, दोज हु वांट टू बी नोबल। द वेदाज आर द टेक्स्ट ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। इट इज पैरामाउंट ड्यूटी ऑफ एवरी आर्य, दोज हु वांट टू बी प्रोग्रेसिव, टू रीड एंड टीच, हियर एंड रिसाइट देम। ये तीसरा नियम है आर्य समाज का। मतलब जो आर्य समाज से जुड़ना चाहें उनको वेद और दूसरे शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो दो पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो वेद सभी अच्छे व ट्रू नॉलेज का सोर्स है, और दूसरा पढ़ना पढ़ाना क्यों जरूरी है। देवियों सज्जनों, मनुष्य या इंसान जो है वो बाकी सभी लाइफ से अलग है। न केवल अलग है, ऊंचा है वो, इसीलिए कि उसमें वो शक्ति है कि वो ज्ञान पा सकता है। दो तरह के ज्ञान हम एक्वायर कर सकते हैं। एक तो इंट्यूशनल, जो हमारे अपने अंदर से जो हम ज्ञान लेते हैं विदाउट हेल्पिंग टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स। दूसरा, दुनिया में अलग अलग चीजों से हम ज्ञान लेते हैं और हम अपने आप को एनलाइटेंड इन्फॉर्म्ड करते रहते हैं। ये हमें पशुओं से एनिमल से अलग करता है। और वो जो ज्ञान है, पहले प्रिंसिपल में बताया द गॉड ईश्वर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेजेस। हमारे सारे शास्त्रों का यही मानना है कि कोई भी ज्ञान जो हमें हो चुका है या होने वाला है, उन सबका एक सोर्स है और वो सोर्स ईश्वर है। वो सोर्स कोई यूनिवर्स नहीं हो सकता, कॉस्मस नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स मेड ऑफ मैटर है। कोई कॉन्शियस एंटिटी होना चाहिए जहां से सारे ज्ञान का सोर्स हो। और वो जो भी ज्ञान हमारे तक आता है वो ईश्वर का और हमारे बीच में जो कनेक्शन है, दैट्स हाउ वी गेट नॉलेज। पर जब इंसान पहली बार संसार में आया एज ए स्पीस, तो ईश्वर ने उसको जो ज्ञान है वो जो इंसान के अंदर या उसके इंट्यूशन में, उसके माइंड में जो ज्ञान प्रकट किया, उसी को हम वेद कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अपौरुषेय वेद। मतलब वेद अपौरुषेय है। वेद का मतलब ज्ञान, नॉलेज, ऐसा नॉलेज व्हिच इज नॉट मेड बाय मैन, और ऐसा नॉलेज जिसको ह्यूमन बीइंग ने अपने एफर्ट से अर्न किया है, अपितु नेचुरली जो उसके अंदर जो भी रियलाइजेशन हुआ विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट, वो अपौरुषेय है। वेद की जो अपौरुषेयता मीन्स नॉट मैन मेड की दो धाराएं हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है जो आस्तिक मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि के आरंभ में जो प्योर हार्टेड ऋषि थे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, उनके अंदर उस ज्ञान को इंट्यूशन के रूप में प्रकट कराया और उन्होंने जिस भाषा में बोलते थे उस भाषा में लोगों तक पहुंचाया, तो दैट्स हाउ वेद चला। दूसरा, जो ईश्वर को बहुत ज्यादा नहीं मानते, इम्पर्सनल गॉड के रूप में मानते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन है कि सृष्टि के आरंभ में जो प्योर हार्टेड सोल थे ऋषि मुनि जो, उनको जो भी एफर्टलेसली जो भी रियलाइजेशन हुआ वही ज्ञान है जो पहुंचा, उसमें ईश्वर का रोल होना नहीं होना मैटर नहीं करता। तो दो धाराएं हैं, एक आस्तिक मतलब जो ईश्वर को मानते हैं कारण, एक नास्तिक मतलब जो ईश्वर को कारण नहीं मानते हैं। देवियों सज्जनों, ये तो पक्का है कि जो नॉलेज है या जो साइंस है वो कोई 400 साल से आया नहीं है। जब भी ह्यूमन रेस इस धरती पर आया तब से नॉलेज और साइंस बोथ उसके साथ आए। ऐसा नहीं कि आज हम स्पेस शटल में जा रहे तो आज ही साइंस हुआ, और 10,000 साल पहले 5,000 साल पहले साइंस नहीं था। पहली बार जब इंसान ने अपनी पानी को बचाने के लिए कोई घड़ा बनाया, वो घड़ा भी उस समय का मॉडर्न साइंस था। जब पहली बार इंसान ने खाना बनाने की कोशिश की वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, आग को जाना वो भी टेक्नोलॉजी थी, वो उस समय का मॉडर्न साइंस था। आपके लिए आज वो बहुत ही पुरानी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की, उस समय वो मॉडर्न साइंस था, आज वो बहुत बैकवर्ड हो चुका है क्योंकि आज हम जेट्स में जाते हैं। आज आप टेक्नोलॉजी में आईफोन स्मार्टफोन यूज करते हैं, आपको लगता है बड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। 200-400 साल के बाद यही टेक्नोलॉजी आपके अगली 3-4 पीढ़ियों के बाद बोलेंगे वो बड़े पुरानी चीजें थी, उस समय और एडवांस्ड होगा। हर जमाने में साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, नॉलेज होता है, और हर जमाने में वो मॉडर्न होता है। मॉडर्निटी या जो शब्द है वो बड़ा सब्जेक्ट बहुत रिलेटिव होता है। तो ज्ञान और विज्ञान तो हमेशा से रहे हैं, कब कम रहे कब ज्यादा रहे, किस ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड में कम रहा ज्यादा रहा वो अलग बात है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो नई नई चीजें लाता है या अपने इंट्यूशन से पैदा करता है। दूसरी चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वेद जो है दैट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ विजडम नोन टू ह्यूमन काइंड। इस धरती पर अगर कोई सबसे पुराना सोर्स ऑफ नॉलेज है दैट इज ओनली वेदाज, क्योंकि वेद से पुराना कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बुक के रूप में टेक्स्ट के रूप में हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको माना जाता है द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द प्लैनेट। वेद कब बना ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न तक अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं, पर यह पक्का है कि वेद सबसे पुराना लिटरेचर है, ह्यूमन बींग की नॉलेज का पहला सोर्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदू ट्रेडिशन में यह माना जाता है यह सृष्टि के साथ साथ ये ज्ञान आया है, जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है वो उसके लिए फिक्स डेट फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होता रहता है। सो वेदाज आर द रिविलेशन ऑफ नॉलेज। अगर आप लोगों ने वेद नहीं भी पढ़ा हो, अगर वेद के पेज पलटे हो लाइब्रेरी में है जरूर देखिएगा। देखना इसीलिए हमारे आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपका और हमारे जो एग्जिस्टेंस है, जो कल्चरल एग्जिस्टेंस है, जो रिलीजियस एग्जिस्टेंस है, उसका फाउंटेन और उसका सोर्स वेद है। अगर आप वेद को जानते नहीं, देखते देखा नहीं है, पढ़ना ना भी पढ़ें, तो फिर हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। वेद के हर मंत्र के ऊपर, चारों वेदों में 20,000 करीब करीब मंत्र है, और हर एक मंत्र या बल्क अप मंत्र के ऊपर तीन चीजें रेफरेंस में मिलता है, कि इस मंत्र का या ये जो ग्रुप ऑफ मंत्राज है उसका ऋषि, छंद और देवता लाइब्रेरी में जरूर देखिएगा, खाली उसकी टेक्स्ट को देखिएगा ना भी पढ़ें। क्या मतलब है ऋषि का? मतलब राइटर नहीं, ऋषि की जो एटिमोलॉजी है, ग्रामेटिकल एटिमोलॉजी, द सीयर, देखने वाला और रियलाइज करने वाला। मतलब जिस ऋषि ने, जिस व्यक्ति ने उस विचार को, उस ज्ञान को एक्सपीरियंस किया या रियलाइज किया पहली बार और उसको एक्सप्रेस किया, वो उस मंत्र का ऋषि है, नट ऑथर, नट मेकर, नट नट द क्रिएटर। ही इज जस्ट डिस्कवरर ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट। मंत्र का अर्थ होता है थॉट। फिर मंत्र के ऊपर एक दूसरा चीज मिलता है, छंद। ये मंत्र जिस मीटर में लिखा गया, जो पोएटिक मीटर में लिखा गया, वो भी वहां लिखा होता है। वो इसीलिए कि आपको गाने में आसानी हो। जैसे कोई जो गाने, जो लोग गायक होते हैं, उनको पता होता है कि ये गाना किस राग में गाए, किस स्वर में गाए। हाँ, हर वेद मंत्र का एक पर्टिकुलर मीटर होता है, इफ यू नो इट। सो आप विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन आप इजीली पढ़ सकते हैं। द थर्ड वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें होता है देवता। किस मंत्र की देवता कौन है? अब देवता शब्द सुनते ही हमें पता है कि कोई भगवान, ईश्वर का समझने लगेंगे। नहीं, हम बार बार डिस्कस करते हैं देवता का क्या अर्थ है। वहां मंत्र के ऊपर जो देवता शब्द है उसका अर्थ होता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मंत्र। ये मंत्र किसके बारे में बात करता है? अगर मंत्र हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, दैट रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज द देवता ऑफ दैट पर्टिकुलर मंत्र। अगर किसी मंत्र में गुस्से के बारे में बात किया गया तो गुस्सा इज द देवता ऑफ दैट मंत्र। अगर धन के बारे में बात किया गया तो धन उस मंत्र की देवता है। किसी भी चीज के बारे में, बारिश के बारे में बात की गई तो बारिश उस मंत्र की देवता है, सब्जेक्ट। तो ऋषि का अर्थ होता है सीयर, जिसने रियलाइज किया। वो जस्ट मीडियम है टू ट्रांसमिट टू पीपुल द इंट्यूशनल एक्सपीरियंस हु इज द रिसीप्ट। ऋषि उस ज्ञान का ऑथर नहीं है। अब हम आते हैं हमारे जो ओवरऑल हिंदू सनातन धर्म ट्रेडिशन में वेद को कितना महत्व दिया जाता है। जितने भी शास्त्र हैं, 100-200 साल लिखे गए लोक भाषा में, मतलब फोक लैंग्वेज में लिखे गए रिलीजियस बुक हो, या 5000-10000 साल पहले लिखे गए अलग अलग शास्त्र हो, ये ट्रेडिशन अभी तक है शुरू से आखिर तक कि वेद इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो भी फैकल्टी ऑफ नॉलेज है उस सबके लिए सबसे ज्यादा ऑथोरिटी बुक है। 3-4 एग्जाम्पल दूंगा समय और प्लेस के अभाव के कारण। वेदोखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति कहता है वेदाज आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑल धर्म। धर्म मीन्स मोरलिटी, एथिक्स, गुड कंडक्ट एक्सेट्रा। धर्म जिज्ञास मानानं प्रमाणं परमं श्रुति ही, वेदाज आर द ओनली सोर्स फॉर देम हु वांट टू नो अबाउट धर्म। मुंडक उपनिषद, अग्निर्मूर्धा चक्षुंसि चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः। ईश्वर का एक स्वरूप मेटाफोरिकली बताया जाता है, फायर इज द हेड ऑफ हिम, हिज आईज आर द सन एंड मून, द क्वार्टर्स, द डायरेक्शंस, दिशाएं, हिज ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड रिवील्ड वेदाज आर हिज वॉइस। मतलब वेद ईश्वर की वाणी है, ये भी पुराने से लेकर नए पढ़े लिखे ज्ञानी ऋषियों से लेकर अनपढ़ साधु संत तक सबकी मानना है। महाभारत, अनादि निधना नित्या वागोत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या शत सर्वा प्रवृत्तयः। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन self-existent God revealed the Vedas, which are eternal and divine. They are the source of guides of all human activities. Vaisheshik philosophy, jo six faculties of philosophy hai, unme se ek, kata hai, tad vachanat amnayasya pramanyam. Amnaya ved ka dusra naam hai, amnaya, shruti, chanda, bahut sare ved ke alag alag naam hai. Kata hai, Vedas are authority because tad vachanat, wo ishwar ki vani hone se. तो कुछ दो चार एग्जाम्पल आपके सामने रखा कैसे हमारे ट्रेडिशन में वेद सबसे ज्यादा बड़ा आसन लेता है. अब आते हैं वेद की ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए. वेद का सिंपल मीनिंग होता है नॉलेज, और वेद की जो सेंटेंसेस है जो लिखे गए हैं प्रोज या पोएट्री में उसको कहते हैं मंत्र. मंत्र वो नहीं जो आपके पूजा पाठ में कोई पंडित जी बोलते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं. केवल वेद के वाक्यों को ही मंत्र कहा जाता है. रेस्ट ऑफ संस्कृत में लिखे गए बातों को श्लोक कहा जाता है. अगर वो वेद का वाक्य नहीं है वो श्लोक होता है. दोनों में फर्क इतना है दोनों ही संस्कृत में लिखे गए होते हैं, पर वेद के वाक्यों को मंत्र इसीलिए कहा जाता है. मंत्र का सिंपल मीनिंग होता है थॉट, और वो थॉट जो एफर्टलेसली आया. श्लोक में तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल बातचीत भी आप संस्कृत में करें वो भी श्लोक हो सकता है, आप अंग्रेजी में करते हैं, हिंदी में करते हैं, बंगाली, फ्रेंच, तमिल, किसी में भी कर सकते हैं, या कोई पोएम पोएट्री लिखेंगे इन द सेम वे. संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसमें आप कुछ भी लिखेंगे वो श्लोक है, वो एक नॉर्मल बात है. पर जो वेद का वाक्य वो नॉर्मल बातों नहीं है, इसीलिए वो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने इसको मंत्र के रूप में जाना. आज तो आपके हमारे घर में पूजा करने वाले पंडित जी कुछ भी उठपटांग बोल जाते हैं, कहते हैं मंत्र है ना, हमें समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है, चलो कोई अच्छा ही बोल रहा होगा. और वो मंत्र चार तरह के होते, तीन तरह के होते हैं. पहला जो मीटर में कंपोज्ड हुआ है उसको कहते हैं ऋक, उसकी कलिक ऋक, और जिसमें म्यूजिकल स्केल्स वगैरह दिया गया है वो है साम, और जो प्रोज में है मतलब जिसमें पोएटिक मीटर्स भी नहीं यूज हुआ या म्यूजिकल स्केल्स मतलब राग स्वर नहीं चढ़ा, वो सब यजुर है. चार वेदों में तीन तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं. ऋक वो मंत्र जो पोएटिक मीटर से बंधे हुए हैं, साम जिसको गाया जाता है, गाने गाया जाता है, और यजुष मतलब जो प्रोज टाइप के होते हैं. इनके कलेक्शन को कहते हैं संगीता. ऋक यजु साम अथर्व ये वेद नहीं, वेदों की संगीता है, कलेक्शन ऑफ मंत्राज. जहां ऋकों का कलेक्शन हुआ वो ऋग्वेद है, जहां यजुषों का कलेक्शन है वो यजुर्वेद है, जहां गाने गानों के वैसे मंत्र जिनमें राग छंद राग वगैरह है उसको सामवेद कहते हैं. और थोड़ा हल्की सी वेदों के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं. ऋग्वेद में 1017 बुक्स हैं, मंडल हैं, और 10522 मंत्र हैं, और वो 10 मंडल में 10 हेडिंग में डिवाइडेड है. यजुर्वेद में 40 चैप्टर हैं और उसमें 1975 मंत्राज हैं. सामवेद जो कि वेदाज ऑफ मेलोडी संगीत का वेद माना जाता है, और इस प्लैनेट में पहला टेक्स्ट ऑफ मेलोडी टेक्स्ट ऑफ म्यूजिक सामवेद है, जिसमें 1549 मंत्राज हैं, और अथर्ववेद में 20 चैप्टर्स हैं उसमें 5977 मंत्राज है. अब आते हैं और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में वेदों में, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा ये मान्यता रही है कि वेद ईश्वरीय वाणी है, उसमें किसी भी तरह की अल्टरेशन नहीं होना चाहिए या इंटरपोलेशन नहीं होना चाहिए। मजेदार बात है कि दुनिया में कोई भी एंशिएंट बुक नहीं है जिसमें अल्टरेशन नहीं हुआ हो। अल्टरेशन मतलब बाद में किसी ने कुछ जोड़ दिया या निकाल दिया। पर सरप्राइजिंगली वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है और आज तक उसमें एक कॉमा या फुल स्टॉप किसी ने ना जोड़ पाया ना निकाल पाया। और हजार हजार सालों तक ये रिटन स्टेज में नहीं था, सिर्फ ओरल स्टेज पर था श्रुति के रूप में। उसके बावजूद भी एक कमा, एक फुल स्टॉप, एक मात्रा चेंज नहीं हो पाया। क्यों? ये कोई अपने आप नहीं हुआ, ये कोई रैंडमली नहीं हुआ। हमारे ऋषियों ने ऐसा डिवाइस अडॉप्ट किया कि वेद की जो ओरिजिनलिटी है उसमें किसी भी तरह की इन फ्यूचर कोई छेड़छाड़ करना चाहे तो ना कर सके। देवियों सज्जनों, इस बात की इंपोर्टेंस समझने के लिए जान लीजिए, वेद के अलावा जितने भी हमारे हिंदू शास्त्र है एक भी शास्त्र नहीं जिसमें एडल्टरेशन नहीं हुआ हो। गीता जिसमें 700 श्लोक है, स्कॉलर्स मानते हैं मोर देन हाफ मतलब 400 करीब श्लोक बाद में जोड़े गए हैं। महाभारत जो 25,000 श्लोकों का ग्रंथ था पहले, आज वो मोर देन 200,000 श्लोकों का ग्रंथ है, मतलब 175,000 श्लोक आज महाभारत में ओरिजिनल नहीं है, बाद में लोग जोड़ते गए। एवरी सिंगल बुक इज एडल्टरेट, मिलावटी हो चुका है। सरप्राइजिंगली वेद नहीं हुए। वेदों के एक बहुत बड़े स्कॉलर प्रोफेसर ए मैकडोनल जो जर्मन के हैं, उन्होंने अपने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में लिखते हैं, द डिवाइसेस अडॉप्टेड बाय द ऋषिज टू सेफगार्ड द लेटर ऑफ व्हाट दे रिगार्डेड एज द वर्ड ऑफ गॉड अगेंस्ट अल्टरेशन इंटरपोलेशन और ओमिशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिक्यूएशंस सून बिगैन टू बी टेकन टू गार्ड द कैनोनिकल टेक्स्ट thus fixed against the possibility of any change or loss. The result has been its preservation with a faithfulness unique in literary history. दुनिया में ये अपने आप में बड़ा अजूबा है, ये जो वेदों की अल्टरेशन को रोकने के लिए जो सिस्टम ऋषियों ने बनाया, इवन टूडे इट्स वेरी मच आश्चर्यजनक है, सरप्राइजिंग है कि किस तरह एक लिटरेचर को जो मोस्टली ओरल था उसमें ये चेंजेस को रोकने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने हर मंत्र को पढ़ने की 11 तरह से चैंटिंग स्टाइल बनाया, इसको कहते हैं वेद पाठ, और एक रूल बनाया। वेद के दो तरह के विद्वान होते हैं देवियों सज्जनों, एक जो वेद का पाठ करते हैं रिसाइटेशन करते हैं, उनके लिए एक रूल बनाया गया, वो वेद को समझ, उनको वेद पढ़ाना नहीं चाहिए, दे यू हैव टू मेक द टीचर शुड मेक श्योर दोज हु आर रिसाइटिंग मंत्रा शुड नॉट अंडरस्टैंड द मंत्राज। Don't teach them any grammar or something to learn to understand the Vedas. They have to only learn the process how to recite it in different ways, 11 types of ways. दूसरे type के scholar जो वेद को समझते हैं, उसकी words को, उसकी sentence को समझते हैं, to make sure जो समझते हैं वो चाहेंगे कि मंत्र में हेराफेरी किया जाए अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि स्कॉलर ही दुनिया में होते हैं जो सबसे गड़बड़ी झाला फैलाते हैं, और पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, अच्छा भी करते हैं बुरा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में पावर होता है। जो वेद रिसाइटेशन करने वाले हैं, जब भी कोई स्कॉलर चेंज करने की कोशिश करे और वेद पाठी को कहा जाए तुम वेद इस पर्टिकुलर मंत्र को पढ़ो, इस वे में पढ़ो, इस वे में पढ़ो, 11 में से 2-3 वे में पढ़ेगा तो वो शब्द अपने आप पकड़ा जाएगा, क्योंकि वेद पाठी को पता है वो उससे एक अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ अक्षर मिस हुआ, ज्यादा हुआ, वो गिरने लगेगा, मिस्टेक करने लगेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा एक छोटे से मंत्र का, और 11 नहीं आप बोर हो जाएंगे, मैं सिर्फ लास्ट शुरू के 4 पार्ट स्टाइल और जो लास्ट पार्ट है, जो ये लिस्ट मैंने दे रखा है, संगीता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। संगीता पाठ मतलब वेद का मंत्र जैसे आपके सामने है आज इट इज, उसको पढ़ते हैं जैसे हवन में आप पाठ करते हैं। पदपाठ मतलब एवरी उस मंत्र के एवरी वर्ड्स को, उसकी प्रीफिक्स और सफिक्स को अलग करके पढ़ने का नाम है, और इस तरह अलग अलग पाठ है। तो मैं एक मंत्र का एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि एक पूरा मंत्र अगर आप जैसे गायत्री मंत्र जब आप रिसाइट करते हैं इट डजेंट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, पर गायत्री मंत्र को अगर आप 11 तरह के पाठ में गाएंगे और जो लास्ट 11वां नंबर में गाएंगे तो गायत्री मंत्र को रिसाइट करने के लिए 10 से 12 मिनट लगेगा केवल गायत्री मंत्र को। पर वो हमारे आपके लिए नहीं, ये सेफ गार्ड्स हैं उनके लिए जो उसको करते हैं। अब देखिए इसकी जो ब्यूटी है, ये छोटा सा मंत्र है, ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा, इसमें सिर्फ 3-2-5 वर्ड्स है। अब देखिए इसकी जो पाठ क्रम कैसा है, ये संगीता पाठ है, मतलब द वे वी जनरली रिसाइट, ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। इसकी पदपाठ है जहां आप उसकी वर्ड्स को, सफिक्स को, प्रीफिक्स को अलग करते हैं, ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। क्रम पाठ आप एक एक वर्ड को बढ़ाते जाते हैं उन्हीं 5 मंत्र में से, वर्ड्स में से, ओषधयः सम सम वदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सह राज्ञा राज्ञे तिराज्ञा। जटा पाठ जो 4 नंबर पाठ है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओषधयः सम सम ओषधयः ओषधयः सम सम वदन्ते वदन्ते सम सम वदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सह सोमेन सोमेन सह सह राज्ञा राज्ञा सह सह राज्ञा राज्ञे तिराज्ञा। अब हम देखेंगे जो उसकी जो लास्ट जो सबसे मुश्किल पाठ है, घन पाठ, 5 वर्ड्स की मंत्र है, 5 वर्ड। इसकी हर एक की अपनी एक टेक्नोलॉजी है, एक डिवाइस है, उसको डेवलप किया गया है, वर्ड्स को कैसे हम इंटरचेंज करेंगे और किस पाठ में कितने बार करेंगे, किस टाइप का चेंज करेंगे जिससे कि अडल्टरेशन हो तो पकड़ में आए। लास्ट पार्ट देखेंगे घन पाठ, ओषधयः सम सम ओषधयः ओषधयः सम वदन्ते वदन्ते सोम ओषधयः ओषधयः सम वदन्ते वदन्ते सम सम अवद सम वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते सम सम वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते सोमेन सह सह सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह सह सोमेन सोमेन सह राज्ञा राज्ञा सह सोमेन सोमेन सह राज्ञा राज्ञा सह सह राज्ञे तिराज्ञा राज्ञा सहेति सह सह राज्ञे तिराज्ञा। ये थोड़ा मैंने आपको ग्लिम्स देने के लिए, क्योंकि ये आपका कल्चर है, ये आपकी ही ट्रेडिशन है और आपको पता होना चाहिए। देवियों सज्जनों, मजेदार बात है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड इंडिया में भी अब इस तरह के इसको प्रिजर्व करने वाले, पाठ करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, और इसकी जो पाठ करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उनको रोज 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 8-10 घंटे। मोस्ट ऑफ वेद पाठीज आर पुअरेस्ट पीपुल इन इंडिया, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकते, और ये हजारों सालों से ट्रेडिशनल करते हैं, क्योंकि इसको कोई प्रोफेशन नहीं बना सकता, सिर्फ वो फैमिली मोटिवेशन होता है। आज उसकी संख्या 1000 में भी नहीं, 100s में, मोस्टली साउथ इंडिया में, कुछ गुजरात महाराष्ट्र में, कुछ काशी में है, बाकी लोप हो गए। और उनमें से भी बहुत सिर्फ एक वेद जानते हैं, कोई दो वेद जानता है, चारों वेदों को जानने वाले रेयरिस्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको गरीबी में जीना पड़ता है, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, जीरो होता है, ये सब करके कोई आपको रोजगार नहीं देने वाला है। तो वो क्यों करते हैं? वो जो अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, जिसको आप समझते नहीं नकारते हैं, अपने शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है उसको बचाए रखने के लिए वो सोचते हैं। वो एक तरह का वॉरियर है, जैसे देश को बचाने के लिए सोल्जर होते हैं, वो अपने शास्त्रों को बचाने के लिए वो वॉरियर होते हैं। उनको कोई मोटिवेशन नहीं है, उनके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस उनको वही ट्रेडिशनली हेरिडेटरी वो इसको पालन करते रहते हैं। आजकल इसको यूनाइटेड नेशंस की जो यूनेस्को है, ये वेद पाठ को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। और इन सभी वेदों पाठों की रिकॉर्डिंग आपको यूनेस्को में भी मिलेगा, बिकॉज ये बहुत यूनिक चीजें हैं दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। देवी उस सज्जनों, वेद जैसे मैंने बताया इसका मतलब है नॉलेज। जब आप कहते हैं वेद, इसका एक्चुअली मतलब होता है नॉलेज, क्योंकि उस समय वेद के अलावा कोई दूसरा नॉलेज नहीं था। और जब आप ऋग्वेद सामवेद वगैरह कहते हैं एज ए बुक, तो मतलब नॉलेज ऑफ ए बुक ऑफ ए नॉलेज। नॉलेज तो मंत्र है, थॉट है, जो आपके विचारों में होता है। इसीलिए ये जो टेक्स्ट बुक आप लाइब्रेरी में देखते हैं, हमने इनको कभी केयर नहीं किया ये बुक के रूप में छपा है नहीं छपा है। विचार होना चाहिए। और भारत हजार डेढ़ हजार साल तक गुलाम रहा, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कुचल दिया गया। लाइब्रेरी जो हम सुनते हैं कहानी कि नालंदा की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलने में महीनों लगा, इतने बुक्स थे, मतलब हम हजार हजार बुक्स खो चुके हैं, पर वेद का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वेद बुक के रूप में कम जाना जाता है, ओरली ज्यादा रहा। इसीलिए संस्कृत में हमारे बड़ा सुंदर श्लोक है, वो ज्ञान ऐसा एक धरोहर है जो चोर भी नहीं चोरी कर सकता। बुक तो कोई चोरी कर सकता है, पर आपकी नॉलेज को कौन चोरी करेगा? तो वेद कभी भी नष्ट नहीं हुआ। और ये जो वेद है, जब स्वामी दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसका अर्थ है कि वेद द स्टोर हाउस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ विजडम। नॉलेज के जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है या फैकल्टीज है, वो केवल रिलीजियस नहीं, वेद केवल रिलीजियस बुक नहीं रहा, आजकल हो गया, क्योंकि अलग अलग रिलीजियंस आ गए। रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, मैथ हो, उन ये सब वेद में है, ऐसा नहीं है। इन सबका जो सीड है, जो सोर्स है, वो ग्लिम्स आपको वेदों में मिलता है। और आगे जितने भी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को लेकर बने, वो सब ने ये क्रेडिट दिया कि हम वेद के उस सोर्स को यूज करके आगे बढ़े। इसीलिए वेद कोई, जैसे कि बाकी रिलीजियन में जो बुक्स आपको मिलेंगे, होली बुक्स, इट्स फुल ऑफ मिरेकल्स, स्टोरीज, हिस्ट्री, ग्लोरिफिकेशन ऑफ फाउंडर और प्रोफेट्स, ये आपको वेद में नहीं मिलने वाला। ना कोई हिस्ट्री मिलने वाला, ना कोई मिरेकल मिलने वाला, ना कोई प्रोफेसी मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं मिलना, ना कोई स्टोरीज मिलने वाला, ना कोई मिथ मिलने वाला, क्योंकि प्योरली नॉलेज है और इसीलिए वो बड़ा यूनिवर्सियल है। कभी आपको मन करे वेद में क्या है जानने के लिए और वेद आप पढ़ नहीं सकते, तो आप स्वामी दयानंद जी का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जरूर पढ़ें। अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन ऑफ कमेंट्री ऑन ऋग्वेद लाइब्रेरी में भी है और हमारे बुक सेल डिपार्टमेंट में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। आपको पता चलेगा वेदों वेद क्या है, उसमें क्या क्या लिखे गए हैं, कैसे लिखे गए हैं, कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं एक दूसरे पड़ाव की ओर। ओवरऑल आपको हमने थोड़ा बताया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब हम डिस्कस करेंगे वेद क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि थर्ड नियम का सेकेंड लाइन है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनना सवारियों का परम धर्म है। ये जो कुछ मैंने बताया वो रीजन नहीं है वेद पढ़ें, वो उनके लिए वेद पढ़ना है जो स्कॉलर हैं। अभी हमारे कॉमन आदमी के लिए वेद क्यों जानना चाहिए वो हमें जानना है, बिकॉज वेदाज आर ट्रूली यूनिवर्सियल। वो किसी पर्टिकुलर एरा से रिलेटेड नहीं है, ना वेद की बातें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी बौद्ध कम्युनिस्ट, किसी सोच पर्टिकुलर सोच को बढ़ावा नहीं देते हैं। दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल चीजें हैं जो ह्यूमन बींग के लिए जरूरी है उन सब की थॉट आपको मिलेगा, किसी भी रिलीजियस बुक में आपको मिलेगा। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जीसस कितने महान है, फिर बिलीव इन जीसस विल बी ए क्रिश्चियन। कुरान पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मोहम्मद और अल्लाह की इंपॉर्टेंस क्या है, नहीं मानेंगे तो आप मुसलमान नहीं होंगे एक्सेट्रा। वेद आपको बताता है मनुर्भव। ये हिंदू शब्द तो 200-300 साल से आया, हमारे यहां ये हिंदू वर्ड भी नहीं था। मनुर्भव इंसान बनो, बी ए ह्यूमन बींग, इसीलिए वेद को इंपोर्टेंस देना चाहिए। वेद इसीलिए पढ़ना चाहिए, वेद का ईश्वर किसी चेयर पर सिंहासन पर सातवें आसमान या चौथे आसमान पर नहीं बैठा है, ना किसी खीर सागर में कैलाश पर्वत में नहीं बैठा है, बीवी बच्चों को नहीं पाल रहा है। वेद का ईश्वर सर्वव्यापक है, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर भी है, अनचेंजेबल है, अनडाइंग है, अनबर्न है। इस यूनिवर्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, उसको हमेशा मेंटेन करने वाला है। और वेद का ईश्वर मिरेकल नहीं करता है किसी पर्टिकुलर आदमी को खुश करने के लिए। वो गुस्से में शाप नहीं देता क्योंकि तुम उसको नहीं मानते हो, उसकी प्रोफेट को नहीं मानते हो। वो सोता नहीं है जब क्रिएशन होता है और अचानक सोकर उड़ता है, नींद में क्रिएशन कर डालता है, ऐसा भी नहीं है। वेद के ईश्वर का कोई अपना कोट नहीं जहां एंजल्स रहते हैं नाचते गाते हैं। वो किसी आदमी को प्रोफेट बना के नहीं भेजता, जाओ मेरे प्रचार करो, जो तुम्हें माने उन्हीं को मैं स्वर्ग भेजूंगा, बाकी सबको नर्क भेजूंगा। वेद का ईश्वर किसी के लिए ना फेवर करता है ना अनफेवर करता है, इसीलिए वेद पढ़ना चाहिए। वेद इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको उसको सुपरस्टिशन का कोई थोड़ा सा भी एंगल नहीं मिलने वाला। अल्दो इतना पुराना बुक है, इतने पुराने ज्ञान है, हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से प्री हिस्टोरिक है। आप कहेंगे कि ऐसे जमाने की जहां लोग को जंगल में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, पर वेद आपको हमेशा साइंटिफिक थिंकिंग के लिए इनकरेज करता है। दे आर जस्ट टू रिजेक्ट व्हाट एवर इज बेस्ड ऑन मेरे लिए द टॉल क्लेम्स आर डजन स्टैंड द टेस्ट ऑफ रीजन। कोई वेद आपको नहीं बताता है गंगा में नहाने से पाप मुक्त होता है, कोई वेद आपको नहीं बताता है कन्फेशन करने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी घोषणा नहीं करता आपको उल्लू बनाने के लिए। वेदाज गाइड दैट इंस्टीड ऑफ ब्लाइंड फेथ ऑन एनीथिंग वन शुड अटेम्प्ट टू डिस्कवर द विजडम विद इन थ्रू एफर्ट्स कंटेम्पलेशन गुड डीड्स एंड नॉलेज सीकिंग। वेद कहता है खुद सत्य को ढूंढने की कोशिश करो अपने अंदर अपने बाहर, किसी पर ब्लाइंड बिलीव मत करो क्योंकि उसका अपीयरेंस अच्छा है, वो कोई इंसान हो या बुक हो या कोई थॉट हो, क्योंकि दिखने में अच्छा है सुनने में अच्छा है, इसीलिए डोंट बिलीव इट, एक्सपेरिमेंट इट। पूरा जो सनातन हिंदू धर्म है, इट वॉज नॉट ए बिलीफ सिस्टम, इट वॉज ए सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, रियलाइजेशन, सीकिंग। जो आज मॉडर्न हिंदू है वो पैरेलल टू अदर बिलीव करो, इसीलिए वेद पढ़ना चाहिए। वेद इसीलिए पढ़ना चाहिए, वेद नेवर आस्क यू टू बिलीव इन हेवन, हेल, एडम, ईव, एंजेल, जजमेंट डे, प्रोफेट, घोस्ट और सैटन, नथिंग। आप मुक्त हैं, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है हेवन एंड हो हेल? ये हेवन एंड हेल आपके अंदर है, ये सिचुएशन है। अगर आपकी फैमिली में सब खुशी है तो आप स्वर्ग है, आपके ऑफिस में सब अच्छा है तो स्वर्ग है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो स्वर्ग है, लाइफ में बुरा चल रहा है तो नर्क है। हेवन एंड हेल कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है जहां आप किसी पर्टिकुलर को बिलीव करोगे तो नर्क स्वर्ग जाओगे, नहीं मानोगे तो नर्क जाओगे। वेद कहता है कि स्वर्ग और नर्क तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे अपने सुख दुख है। तुम अगर सुख में हो, लाइफ को एंजॉय करते हो तो तुम स्वर्ग में हो। अगर तुम कितने भी बढ़िया से बढ़िया जगह पर हो, बड़े से बड़े 5-स्टार होटल में शूट लेकर रहते हो, हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते करते ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो तो तुम नर्क में हो। झोंपड़ी में भी रहते हो, अगर सुख में रहते हो तो वो स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क तुम्हारे कर्मों के फल हैं और तुम्हारे लाइफस्टाइल से बनता है, वो तुम्हारे स्टेज ऑफ माइंड है। जजमेंट डे कुछ नहीं है कि कहीं पर्टिकुलर डे जहां ईश्वर जज करता है किसी को स्वर्ग और नर्क भेजना बेस्ड ऑन हिज और हर ओन एम्बेसडर्स। जजमेंट डे, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज जजमेंट मोमेंट। जो भी जब भी हम अच्छा काम करते हैं वहीं से जजमेंट आ जाता है कि अच्छा फल मिलेगा, जब भी बुरा काम करते हैं उसका डिसीजन वही हो जाता है बुरा फल मिलेगा, अभी मिलेगा बाद में मिलेगा ये अलग है, डिसीजन वही हो जाता है, जजमेंट वही मिल जाता है। कोई 5,000 साल वेट करने की जरूरत नहीं, किसी ग्रेवयार्ड में दबके रहने की जरूरत नहीं, आपको मिलता जाएगा। और ईश्वर को ये इसके लिए किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं आज ए प्रोफेट और समथिंग कि तुम मेरे जगह मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनो। वेद किसी प्रोफेसी को प्रमोट नहीं करता। वेद इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसके लिए आपको अपने ईश्वर को पाने के लिए आपको किसी प्रोफेसी की जरूरत नहीं है। आपका अपना सोल ही आपका प्रोफेट है, उसको नर्चर करो, उसको पॉलिश करो, उसको प्यूरिफाई करो, तुम खुद ईश्वर के साथ मिलोगे। तुम्हें किसी दूसरे के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं। दूसरे की हेल्प चाहिए, हरेक को चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, चलने के लिए भी चाहिए, उतना ही हेल्प जितना डे टू डे लाइफ में हेल्प चाहिए। उतना हेल्प हम किसी गुरु से या पुस्तक से लेंगे उतना उसके लिए किसी गुरु या पुस्तक को ईश्वर या प्रोफेट मानने की जरूरत नहीं है। शैतान नाम का कोई चीज वेद इसीलिए पढ़ना चाहिए कि क्योंकि शैतान आपको डराने नहीं आने वाला है। तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हारे शैतान है, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी देवता है, कोई दूसरा शैतान अननेसेसरी तंग करने तुम्हें नहीं आएगा अगर तुम वेद को मानते हो। ये शैतान तुम्हारे अंदर तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारे अच्छे सोच देव है, तुम्हारे बुरे सोच तुम्हारे शैतान है। और वेदार्ट डू नॉट डिमांड ब्लाइंड बिलीफ, इसीलिए आपको वेद पढ़ना चाहिए क्योंकि वेद आपको कभी भी किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं मोटिवेट करता है। उल्टा वेद का मानना है हर चीज को ठोक पीट के परखो। जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं वो कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 8 तरह के कसौटी बताते हैं सत्य को परखने का। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अभाव, ये सब क्या चीजें हैं? कोई भी चीज तुम्हारे पास आता है यो इनको इनसे परखो। फर्स्ट है कि सेंसुअल परसेप्शन, अपने सेंसेस के द्वारा जानो, खुद जानो। नहीं जान सकते हो इन्फ्रेंस थ्योरी अप्लाई करो, वो नहीं हो सकता है। कोई टेस्टिमोनी, कोई वर्ल्ड टेस्टिमोनी, कोई ऑथेंटिक बुक के द्वारा जानो, नहीं हो सकता। ऐसे 8 तरह के मेथड दिया है। सत्य को परख के जानो, डोंट बिलीव ब्लाइंडली। देवियों सज्जनों, आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे और भी जानेंगे वेद के बाद जो दूसरे भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनका क्या क्या काम है, नेक्स्ट संडे को जानने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको वेद के प्रति थोड़ी रुचि जगी होगी। वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो वेद के बारे में कुछ जरूर पढ़िए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।